अब आइए आज हम और आप जनाब हाजी कासम भाई पटनी बेंगलोर वालों के मकान पे इसलिए जमा हुए हैं कि सरकार पीर पीरां मीर मीरां शाह जीलां सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाह ताला अन्हु की आज नियाज शरीफ का इन्होंने प्रोग्राम रखा है जिसमें हुजूर अशरफुल फुकहा उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद मुजीब अशरफ साहब तिल्ला हमें कुछ नसीहत आमोज कलमात इरशाद फरमाएंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि हजरत का बयान बगौर समाज फरमाए। नारे तकबीर नारे रिसालत हसलक आला हजरत हुजूर अशरफुल फुकहा।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم। दुनिया के निजाम में एक बहुत अहम और बुनियादी चीज है सिस्टम। पूरी जिंदगी और पूरे आलम के निजाम पर अगर हम गौर करें तो आप कुदरत के बनाए हुए सिस्टम को हर जगह महसूस करेंगे और खुल्लम खुल्ला पाएंगे। और जब तक सिस्टम कायम रहता है कोई गड़बड़ी और खराबी नहीं पैदा होती। और जहां सिस्टम और निजाम अनबैलेंस हो जाता है वहां बड़ी बड़ी खराबियां पैदा होती हैं और चलता हुआ निजाम दरहम बरहम हो जाता है। चांद सूरज सितारे हवा बारिश बादल जमीन का कायम रहना आसमान का तना हुआ रहना ये सब सिस्टमेटिक है। इसमें कहीं रखना नहीं पैदा होता। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को भी सिस्टम सिखाया है और बताया है ताकि बिगड़े हुए इंसान जब उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो वो खुद समझ जाएंगे। ये हम सोफा सेट पर बैठे हैं, ये लकड़ी ऐसी नहीं थी जैसी आप देख रहे हैं। ये तो जंगल में एक दरख्त की लकड़ी जो खुरदरी थी एंड बेंड थी, उसमें कोई नक्शो निगार नहीं था। कुदरत ने पैदा किया, काटने वाले ने काटा। अगर काट करके यूं ही रख दिया जाता वो दरख्त तो सूख जाता, बारिश में सड़ जाता या बहुत कुछ ये होता तो उसको चीर करके आग में जला दिया जाता। क्योंकि उस पर जो कारीगरी और सिस्टम का वर्क होना चाहिए वो नहीं है। तो अब उसे सड़ना है, खराब होना है या आग में जलना है या कचरा बन करके इधर उधर बिखरना है। और जब वो लकड़ी जो खुरदरी एंड बेंड थी जब एक कारपेंटर ने अपने इल्म और अपने हुनर और अपने फन से उसका साइज काटा, उस पर रंदा दिया, उसको चिकना किया और जैसा उसने एक मॉडल बनाया, जहन में सोचा है उसी मॉडल के हिसाब से उसने उस पर वर्क और काम शुरू किया। तो अब वो लकड़ी अब सिर्फ एक लकड़ी नहीं रह गई, उसका नाम भी बदल गया, भी हो गई, वही लकड़ी अब पलंग कहलाती है, वही लकड़ी कुर्सी कहलाती है, वही लकड़ी तख्त कहलाती है, वही लकड़ी अलमीरा कहलाती है। लकड़ी हकीकत सबकी एक है, लेकिन मॉडल सबका अलग हो गया, नाम सबका अलग हो गया, काम सबका अलग हो गया, कीमत सबकी अलग हो गई।
बेशक
पैदा हुई लकड़ी और मार्केट में आई तो अलग अलग नाम से वो लकड़ी बिक रही है, अलग अलग काम में इस्तेमाल की जा रही है। अब उसको जलाया नहीं जाता, बारिश में भिगाया नहीं जाता, बचाया जाता
है,
इसलिए कि वो संवर चुकी है और खुद नहीं संवरी है, संवारने वाले की, खुद नहीं बनी है, किसी बनाने वाले की। ये दुनिया का एक निजाम है, सिस्टम। जब वो सिस्टम आप ऊपर बैठ गई हो, जब उस सिस्टम के जरिए वर्क हुआ, उस पर काम और मेहनत हुई, तो एक मामूली लकड़ी हजारों की लाखों की कीमत की बिकती
है।
अब इसकी तमसील आप लोग पढ़े लिखे हैं, खुद समझ गए होंगे। इसी तरह इंसान दुनिया में आया, माँ के पेट से सब पैदा हुआ,
बेशक
फिरौन भी उसी पेट से पैदा हुआ, नमरूद भी उसी पेट से पैदा हुआ, यजीद भी उसी पेट से पैदा हुआ, और हुसैन भी पेट ही से पैदा हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी माँ के पेट ही से पैदा हुए, सब माँ के पेट से पैदा हुए, जैसे कि जितनी लकड़ी है सब जमीन से पैदा
हुई।
ऐसे इंसान आसमान से नहीं गिरा, नदी में से नहीं निकल गया, जमीन में से नहीं उभर गया, सब एक सिस्टम के हिसाब से पैदा हुआ। तो एक सिस्टम कुदरत का है और एक सिस्टम कुदरत ने इंसानों को दिया, कुदरत ने अपने सिस्टम से पैदा कर दिया। अब ये जिस तरह जंगल में लकड़ियां कुदरत के सिस्टम से पैदा हुई, लेकिन कारपेंटर को अल्लाह ताला ने हुनर दिया, इल्म दिया, काटता है, साइज बनाता है, फिर उस पर काम और मेहनत करता है, तो वो कीमत, शक्ल, सूरत, इफादियत सब में तब्दील होती है। ऐसी माँ के पेट से इंसान पैदा हुआ, अगर इसको ऐसी छोड़ दिया जाए और बदअखलाकी की धूप में वो सूखता रहे, गलतकारी के आग में जला दिया जाए, उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन अब इंसान में से परवरदिगार आलम ने कुछ कारीगर बनाए, फनकार बनाए, आर्टिस्ट बना दिया। जब वो हजरात इन बच्चों, जवानों और इंसानों पर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी खानकाहों का सिस्टम लगाकर किसी को एंड बेंड है तो सीधा कर देते हैं, खुरदुरा है तो उसको साइन पेपर से घिस करके चिकना बना देते हैं, नक्शो नगार की जरूरत है तो अपने आलात से उसमें नक्शो नगार बनाते हैं, और फिर वो लोग ये देखते हैं कि ये आदमी किस इंसानी दुनिया में किस काम के लिए ज्यादा फिट होगा, वैसा उसे बना देते हैं। अब उसका सिर्फ इंसान और आदमी नाम नहीं होता है, अब उसका या तो आलिम नाम हो जाता है, या उसका कुतुब नाम हो जाता है, उसका गौश नाम हो जाता है, अब दाल नाम हो जाता है, अब अलग अलग इंसानी मार्केट नहीं है, ये बाजारे मुहम्मदी में अब उसका मॉडल, अब उसकी कीमत एक जैसी नहीं होती है, उसका काम एक जैसा नहीं होता। हर वली के काम को अल्लाह ताला ने अलग अलग रखा है, हर वली का नाम अलग अलग रख दिया है, उनके स्टेटस को अल्लाह ने अलग अलग रखा है। ये उस वली की इस्तेदाद और नेचुरल उसके अंदर जो खूबियां हैं उसके एतबार से किसी को अल्लाह ताला ने सिर्फ वली बना दिया, किसी को अल्लाह ताला ने कुतुब बना दिया, किसी को कुतुबुल अखताब बना दिया है, किसी को गौश बना दिया, किसी को गौसुल अदियास बना दिया है, किसी को नजबा बनाया है, किसी को नजीब बनाया है, किसी को फर्द बनाया है, किसी को फर्द उल अफराद बनाया है, किसी को गौसे आजम बना दिया है। और ये जो लोग बने हैं अल्लाह की अता से और उन औलिया किराम की खानकाहों में, फैक्ट्री में ये ढले हुए हैं, अब इनका मकाम और इनकी कीमत वही जाने कदर गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी। कदरे गौहर डायमंड का जो डायमंड की कीमत है वो सब नहीं जानेंगे, वो तो आर्टिफिशियल भी समझेंगे और आर्टिफिशियल को गलती में लोग असली समझ लेते हैं, यही है गुमराही। वली है नहीं समझ पाते कि ये वली है, समझते हैं बनावटी, और जो बनावटी है उसको समझ ले गए सबसे बड़ा बाबा है पहुंचेला, यहां गुमराही है। इस निजाम को भी समझने की जरूरत होती है कि इसकी कीमत क्या है। कीमत सब नहीं लगा सकते, हर चीज की कीमत जो उस लाइन का आदमी होगा वही लगाएगा। हम अपनी मर्जी से किसी वली को वली कहें, किसी वली की वलायत का इनकार करें, यह हमारा काम नहीं है। उसके लिए रब ने एक कसौटी और मेयार बना दिया ताकि वो सिस्टम ले लो, खोरे और खोटे और खरे की पहचान हो जाएगी, और वो कसौटी है इन अवलिया उहू इल्लल
मुत्तकून।
अल्लाह का वली वही होगा जो बिल्कुल परहेजगार हो। एक जुमला है मुत्तकून, अब इस कसौटी पर आप देखो, अब परहेजगार कहते किसको हैं, तकवा कहते किसको हैं। उसके लिए तकवा के लिए शरीयत को फॉलो करना, जो तबीयत को छोड़े शरीयत को माने, दो जुमले में तकवा की और मुत्तकी की ये डेफिनेशन और तारीफ है। शरीयत को छोड़ दे, जिसको हम तसव्वुफ में की बोली में कहते नफ्स से कुर्सी कर ले,
शरीयत को छोड़े नहीं शरीयत को
तबीयत को, तबीयत को, वो बुढ़ापे का असर है, तबीयत को छोड़ दे, इसको हम तसव्वुफ की बोली में कहते हैं नफ्स से कुर्सी, अपने नफ्स को जबह कर दे, नफ्स को मार दे। तबीयत जब मर गई, नफ्स मर गया, तो अब आपको के लिए रुकावट खत्म हो गई। रुकावट कहां होती है, पानी बह रहा है तो रुकावट कहां होगी, जहां पर पत्थर आ गया हो या मेघ आ गई हो या कोई लकड़ी आ गई हो, कचरा जम गया हो, तो पानी बहते बहते वहां रुक जाता है। रुकावट के लिए कोई रोक होना चाहिए। इंसान कहां रुकता है नेकियों से, उसकी दो रुकावटें हैं, एक तो नफ्से अम्मारा और दूसरे शैतान, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। शैतान बाहर से रुकावट डालता है और नफ्स अंदर से रुकावट डालता है। जब नफ्स को आप मार डालेंगे तो शैतान खुद ब खुद इंशाअल्लाह मायूस हो जाएगा। शैतान मरेगा नहीं, वो तो लंबी जिंदगी लेकर के आया, इन्नका मिनल मुनज़रीन, कयामत तक वो जिंदा रहेगा, उसको आप मार नहीं सकते, बल्कि इस दुश्मन को आप भगा सकते। नफ्स को मारिए और ये नफ्स मर गया तो ये दुश्मन जो है थक जाएगा। हजरत इमाम ग़ज़ाली अय्याउल उलूम में फरमाते हैं कि इंसान का नफ्स शैतान की सवारी, नफ्स की, नफ्स उसका घोड़ा है और ख्वाहिशात लगाम है। शैतान क्या करता है, नफ्स के मुंह में ख्वाहिशात लगाम लगा करके और फिर सवारी करता है। आदमी नफ्स का घोड़ा उसको लेकर के जिस वादी में चाहता है फेंक देता है, जिस गलत वादी में चाहता है उसे पहुंचा देता है। भाई जब शैतान की सवारी मर गई तो शैतान कब तक कोशिश करेगा, आपकी बाइक बिगड़ गई तो यहां से सिटी जाने में कितनी परेशानी हो, और बाइक है तो एक कीक मारा तो सिटी स्टेशन पर आते, दो मरतबा नहीं दस मरतबा आएंगे जाएंगे, और बाइक बिगड़ गई तो एक मरतबा जाएंगे दो मरतबा जाएंगे। मतलब भाई बाइक के अलावा जितनी व्हीकल है आपको नहीं मिल रही है तो आप कितनी मरतबा जाएंगे सिटी स्टेशन, नहीं जाएंगे। अगर कोई चोर है सिटी रेलवे स्टेशन पर जाके लोगों की जेब काटना चाहता है बाइक है तो सुबह भी ट्रेन देखता है फला वक्त है चला जाता है और वहां पर चोरियां करता है, लोगों की जेब काटता है, और बाइक उसकी छीन ली जाए कोई व्हीकल उसमें मुयसर ना हो तो एक दिन दो दिन चोरी करेगा फिर थक जाएगा, थकेगा कि नहीं, जाना बंद हो जाएगा, तो वहां के मुसाफिर खुद ही आराम की सांस लेंगे। इसी तरह नफ्स शैतान का घोड़ा और सवारी है, ये मर गया तो अब शैतान को जल्दी जल्दी तुम्हें बहकाने की अब हिम्मत नहीं होगी, कुछ दिन बहकाएगा बाद में थक जाएगा, अरे अब इसके पास हम टाइम वेस्ट करना नहीं है, दूसरा काम करो। नफ्स खुशी ये इतना अहम काम है, इतना अहम काम है कि औलियाए किराम अपने मुरीदों को, सूफियाए किराम इसी घोड़े को पहले मारते हैं, और अगर मरता मारते नहीं है तो बाद वली इस नफ्स को जो नफ्स अम्मारा है उसको इतना अच्छा विटामिन देते हैं कि वो नफ्स अम्मारा से नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है।
सुभान अल्लाह, सुभान
अल्लाह। ये नफ्स मरता अगर नहीं है तो नफ्स मुतमइन्ना बनता है, और जब नफ्स मुतमइन्ना बनता है तो माशा अल्लाह उसका मामला बहुत ऊंचा होता है, हत्ता कि जब उसका इंतकाल होता है तो फरिश्ते कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना ए इत्मीनान वाली जान चल अपने रब की तरफ लौट जा और अल्लाह के महबूब बंदों में दाखिल हो जा, उसकी जन्नत का गेट खुला हुआ है, प्रवेश कर, इंटर हो जा, तुझे कोई रोकने वाला नहीं। दुनिया में तुम्हें शैतान ने रोका था तो जन्नत का दरवाजा बंद हो गया था, गौसे पाक और गरीब नवाज ने उस कचरे को उस रुकावट को हटा दिया, अब ये पानी जाएगा तो सीधे हौजे कौसर के पास। ये है वली की जरूरत, और वली की पहचान तकवा परहेजगारी है, जिसने अपनी तबीयत को छोड़ दिया मुस्तफा की शरीयत को अपना लिया, इसी को रब ने फरमाया इन औलिया वली जो होता है वो साहिब तकवा। आज हमारे मुसलमान भाई किसी भी आगल पागल को देख लेते हैं बोलते बाबा है पहुंचेला है, अरे तुमको क्या मालूम है, वली रा वली निशना सर,
बेशक
वली को सब नहीं पहचान सकते, वली को वली ही पहचान सकता है, सोने को सोनी पहचानेगा, डायमंड को जौहरी पहचानेगा, और सड़क पर झाड़ू देने वाला ये बोल दे कि जो चमक रहा है वो डायमंड है तो धोखे में डाल देगा, जो पीला है वो सोना है, जी नहीं, सुनार के पास कसौटी होती है कसता, ऐसे अहले इल्म के पास तकवा की कसौटी होती है, पहले कसते हैं फिर किसी के कदम पर झुकते हैं। कहने वाले ने कहा है पानी पियो छान के, पानी पियो छान के, बड़े छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं समझ में नहीं आते, पानी पियो छान के पीर करो पहचान, पानी अगर बगैर छाने ऐसे जो आया नाली गंदी फंसी तो आपने पी लिया बीमार पड़ेंगे, टीबी होगा, कैंसर होगा, ये होगा, इसलिए पानी पियो छान कर और पीर करो पहचानोगे कैसे, पहचानने वालों की निगाह लानी पड़ेगी तब जाकर के पहचाना, गुमराहियत से बचना है इसलिए अल्लाह ताला ने औलिया किराम को पैदा किया। इन वलियों में सबसे बड़े वली पीर पीरा मीर लीरा शाह सीला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान अकदस है, जिनके हम याद यहाँ मनाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तैयार किया, शाह जिला ऐसे नहीं है, सब वली वलियों के यहाँ तैयार होते हैं, और हमारे गौसे पाक मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से तैयार, इसीलिए पेट ही में वली बन गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो कमाल अता फरमाया, और आप फरमाते हैं सारे वलियों के गर्दन पर मेरे कदम है और मेरे गर्दन पर मेरे जद्दे आला का कसम।
बेशक
ये हमारे पीर पीरा मीर मीरा शाह जीला महबूब सुभानी गौसे संदानी शहबाज लामकानी شیخ عبد القادر جیلانی کا اسٹیٹس ہے، یہ ان کا مقام ہے، ان کی بارگاہ میں ذرا بھی اگر کسی نے بدعقیدگی کی تو اگر دنیا میں اس کا اثر نہیں دیکھا تو قبر میں تو اس کا اثر دیکھے گا. حضرت کا ایک شعر اس سلسلے میں ہے، الامام کہہ رہے کیا وہ تیکھا تیرا مارا تیرا کیا تو جہر سے نکل گیا، الامام
علامہ
کہہ رہے تیرا چین سے بھی سوتا ہے. پورا وہ شہر تو نہیں ہوا لیکن مفہوم آپ نے بیان کر دیا کہ آپ کی نظر جس کی طرف سے تیکھی بن گئی یعنی گھوم گئی، ناراض ہو گئے، تو وہ مر کر کے بھی قبر میں چین سے نہیں سوتا. علامہ کہہ رہے وہ تیکھا تیرا، اور بھی کچھ ہے وہ شہر
سوتا نہیں
مارا تیرا، چین سے قبر میں چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. یہ سے بہرحال تو مجھے یہ کہنا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے دل کو ہمیشہ سینہ رکھنا، اپنے خیال کو صحیح رکھنا، اگر اپنا خیال صحیح ہے تو انشاءاللہ فیضان غوث پاک آپ کو رات کی اندھیرے میں بھی ملے گا اور مسجد میں سجدہ گاہ میں بھی ملے گا، درسگاہ میں بھی ملے گا، خانگاہ میں بھی ملے گا، اور وہاں سے رشتہ کٹ گیا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پیشانی پر کالا نشان تو ہوگا لیکن دل میں نور نہیں پیدا. اللہ تعالی ولیوں کی اتباع کا ہمیں جذبہ.
آمین.